ओम शांति। आदरणीय शीलू बहन, हम सभी के बीच उपस्थित हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करते हैं। मैं समझती हूँ काफी भाई बहनें दीदी से परिचित हैं ही, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में आपको परिचित कराना चाहूंगी। जैसा नाम उसी अनुरूप शील, धीर, गंभीर, हर्षित, सभी दैवी गुणों के दर्शन आपके जीवन से होते हैं। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही आप इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए और तभी से ही लौकिक पढ़ाई के साथ साथ राजयोग का भी अभ्यास करते रहे। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 21 वर्ष की आयु में ही बाबा के इस महायज्ञ में समर्पित होकर के अपनी सेवाएं देते रहे। 1976 से आप हेडक्वार्टर माउंट आबू में स्थायी रूप से रह करके राजयोग शिविर का कुशल संचालन करते रहे। विभिन्न वर्ग, जाति, भाषा, धर्म के लोगों के अंदर आपने ईश्वरीय ज्ञान के बीज बोने का कार्य किया। सर्व आत्माओं का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ाने का कार्य किया। पांचों ही महाद्वीप के करीब 60 से भी अधिक देशों में भ्रमण करके अपने परमात्म संदेश भी दिया है। यहां तक जी टीवी, सोनी टीवी, आस्था, संस्कार ऐसे विभिन्न चैनल पर भी आपके प्रवचन समय प्रति समय प्रसारित होते रहे और अभी भी जागरण पर नियमित रूप से आपके प्रवचनों का प्रसारण होता रहता है। आप एजुकेशन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो ऐसी महान अनुभवी आत्मा के द्वारा आज हम इस ज्ञान रत्नों के द्वारा हम सब भट्टी वाले भाई बहने, बोरीवली के भाई बहने अपने आप को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय शीलू बहन जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुंबई महानगरी से आप सभी पधारे हैं। मुंबई महानगरी है ना, तो आप भी सब महान आत्माएं हो। और फिर महाराष्ट्र है तो वैसे ही महान हो, तो महान राष्ट्र से, महान नगरी से महान आत्माओं का स्वागत है, स्वागत है इस बेहद ज्ञान सरोवर में। इस सीजन की यह पहली भट्टी रखी है अपने ब्राह्मण बच्चों के लिए। वैसे तो यहाँ ऐसी भट्टियां अभी तक शायद नहीं रखी है, पहली बार हो रही है। पांडव भवन में तो 2 साल से कर ही रहे हैं, लेकिन ये बीच में थोड़ा सा गैप मिला, डबल विदेशियों की सीजन चल रही है तो इस समय थोड़ा गैप मिला, तो सोचा कि भट्टी रखें। तो उसमें सबसे पहला चांस आपका लग गया, हाँ तो बहुत ही भाग्यशाली हो। ठंडी तो नहीं लगी? मुंबई जैसी ठंडी, मुंबई में तो ठंडी है ही नहीं। मुंबई में हम भी रहे हैं, स्वेटर वेटर तो कभी पहनने का अकल ही नहीं था, वहां रहे तो यहाँ आकर के सब सीखे हैं। जरूरत भी नहीं होती है और होता भी नहीं है। मुंबई वालों को स्वेटर शॉले है रखते हैं, नहीं जरूरत ही नहीं है। वैसे इस बार पंजाब को दिया था क्योंकि वहां तो ठंडी का अनुभव है, पर शायद उनको ये डेट सूट नहीं हुई तो मुंबई वालों ने मौका ले लिया। चलो ये भी अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा टॉपिक मिला है, निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय का आधार निश्चय है। कोई भी कार्य हम करते हैं अगर निश्चय से करते हैं तो अवश्य विजय होती है। हर बात में हर प्रकार से अनुभव करते हैं। अगर पहले ही संशय उठाते हैं, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा होगा नहीं होगा, ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पहले ही अगर ये संशय है तो सफलता में भी संशय हो सकता है। लेकिन अगर पहले से ये निश्चय है कि ये अच्छा ही होगा तो सफलता भी निश्चित है। इसीलिए कहा गया निश्चय बुद्धि विजयंती। और बाबा ने तो हमें निश्चय रखने के लिए चार पिलर्स दिए। निश्चय का फाउंडेशन चार पिलर पर आधारित है। कोई भी चीज है, टेबल है, कुर्सी है, तो चार पिलर अगर मजबूत हो, उसके पैर मजबूत हो, तो वो टेबल या कुर्सी हिलेंगी नहीं। तो ब्राह्मण जीवन में भी निश्चय बुद्धि विजयंती का आधार चार प्रकार का निश्चय या चार बातों में निश्चय जो बाबा कहते हैं, उसमें अगर पूर्ण रूप से निश्चय हो तो कभी ब्राह्मण जीवन डगमगाएगा नहीं, कभी हिलेगा नहीं। चाहे कितनी भी माया के तूफान आए, विघ्न आए, समस्याएं आए, परीक्षाएं आए, लेकिन ब्राह्मण जीवन में अचल अडोल रह सकते हैं। तो कौन से है वो चार बातों का निश्चय? स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और दैवी परिवार में निश्चय। बाबा ने एक बहुत सुंदर मुरली चलाई थी इस पर। तो तब से हमने देखा कि अगर चारों ही पिलर्स मजबूत है तो माया कुछ भी नहीं कर सकती है, हिला ही नहीं सकती हमें। अंगद का भी मिसाल देते हैं ना कि रावण को कहा कि तुम मेरी टांग हिला के तो देखो, अगर ये हिला सकोगे तो आप जरूर राम पर जीत पा सकोगे, आप उनका दूत हूं मैं, आप मुझे ही नहीं हिला सकोगे तो उनको क्या हरा सकोगे, आप ये पैर हिला के तो देखो। तो कितना निश्चय था उसको कि किसका दूत बन के आया हूं, भगवान का दूत। उस पर एक कहानी सुनाते हैं ना, वो चुटकुला सुनाते हैं, एक जगह पढ़ा था चुटकुला इस पर कि अंगद जब गया रावण के दरबार में और का हिला के दिखा और रावण नहीं हिला सका, तो इसके ऊपर एक जोक बनाए कि अंगद जब वापस अपने बैरक में गया ना, अपने साथियों के पास गया, तो उनको तो पता चल गया कि ये तो अंगद जीत पाके आया है, बहुत हिम्मत दिखाई, तो सबने उसको बहुत मुबारक दी। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि अरे अंगद, सचमुच अगर वो तुम्हारा पैर हिला देता होता तो तो क्या होता था? तो कहा कि उसमें मेरे को चिंता करने की जरूरत क्या है, सीता तो राम की थी ना, मेरी थोड़ी थी, वो जाने ना, उसको करना है ना। उसके लिए मैं गया था, मैं अपने लिए थोड़ी गया था, तो जो मुझे डर लगे कि पता नहीं कहीं हिला ना दे, वो तो शक्ति भी तो वही देगा ना, भगवान ही देगा ना, क्योंकि सीता तो उसकी है ना। तो अगर सीता को वापस लेना है तो शक्ति भी वही देगा, तो उसी ने शक्ति दी, तो मैं क्यों घबराऊं कि भाई कहीं वो हिला न दे। बात तो सही है ना कि नहीं? किसकी सीता थी, किसके लिए गया, कोई अपने लिए थोड़ी गया, अपना स्वार्थ तो उसको था नहीं, किसके लिए दिख गया, दूत बन के गया, राम का दूत। तो जिसका दूत बन के जाता है, जिसका संदेश देता है, तो जिम्मेदार कौन? राम ही है। तो एक चुटकुला बना दिया, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी गहराई है कि उसको इतना निश्चय था कि मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें उस प्रभु की शक्ति जरूर मिलेगी। और अपनी भी तो शक्ति का भी निश्चय था ना, कि उसको वो नहीं था खाली राम की शक्ति पर निश्चय था, अपने ऊपर भी निश्चय था कि मेरी टांग कोई हिला नहीं सकता, और राम पर भी निश्चय था कि उसकी शक्ति मुझे जरूर प्राप्त होगी। तो निश्चय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये उसको कितना पक्का था। तो बाबा अंगद का मिसाल क्यों देते, कौन अंगद है? आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि ये जो दिखाते कि राम ने बंदरों की सेना ली, वो तो है तो ठीक है, ठीक ही है। कैसे ठीक है? क्योंकि हम सभी बंदर जैसे ही तो थे, पांचों विकार बंदर में सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखेंगे जितने भी जानवर हैं, सब बेचारे कई तो कितने अच्छे, कितने भोले होते, गाय देखो कितनी भोली है, भोले होते हैं, कोई एक विकार किस में होता है, लेकिन पांचों ही विकार एक बंदर में सबसे ज्यादा होते हैं। काम वासना भी उतनी, क्रोध भी उतना ही, लोभ मोह अहंकार, पांचों ही विकार। हमने तो देखा एक, मैं कहीं हरिद्वार गई थी, तो वहाँ हरिद्वार में बंदर बहुत है, बहुत बंदर है। तो हमने देखा, हम जहाँ ठहरे थे तो बालकनी से हमने देखा एक बंदरी, उसका बच्चा मर गया था, खाली स्केलेटन था, हड्डियों का ढांचा, वो अपने छाती पर लटकाए हुए घूम रही थी, वो हड्डियों का ढांचा भी नहीं छोड़ रही है। वो नहीं यार, जैसे बच्चे होते ना, मतलब बंदरी के बच्चे उसके छाती पर लटके हुए होते, तो मरा हुआ बच्चा और केवल हड्डियां थी बस, स्केलेटन, और वो भी जैसे छाती पर वो जुड़ा लटका हुआ था और उसमें जा रहे थे। अब भले उसको समझ तो नहीं होगी कि कोई मर गया है क्या है, लेकिन मरा हुआ बच्चा भी तो, ये तो है तो मोह की निशानी ना। और क्रोध तो इतना है, मधुबन में आते ना बंदर आते हैं तो भाई लोगों से तो डरते, पर बहनों से डरते नहीं, बहनों को धू करते। लगता है बहुत भोले बेचारे बैठे रहते हैं रास्ते पर, शांत बैठे रहते हैं, तो कोई तो बंदरों को देखते चारों वो बैठे ही रहते हैं, तो कहते हैं तो सब वांदे वखर बैठे, कोई काम धंधा तो है ही नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। लेकिन जब ये आते उनको भूख लगती है और वो अंदर आ जाते डाइनिंग टेबल पर, हमारे पांडव भवन में तो खा, यहाँ तो नहीं देखे बंदर है, यहाँ नहीं आते, लेकिन पांडव भवन में तो बहुत बंदर आते हैं। तो खास करके अगर कोई की थाली रखी हो, फटाफट ऐसे पकड़ते हैं, जो वो बेचारा वो तो भौचक्का रह जाता है कि अरे ये सब क्या हुआ। तो लेकिन है जरूर। तो बाबा भी कहते हैं कि बंदरों की सेना ली, इंसान भी आज ऐसे ही हो गया है, तो ये कोई गलत नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को इतना निश्चय बुद्धि बनाते हैं कि कुछ भी हो जाए हम हिलेंगे नहीं। तो हनुमान हम ही हैं, अंगद हम ही हैं, वीर हम ही हैं, बस उसके लिए निश्चय चाहिए। तो बंदर को मंदिर लायक बाबा बना रहे हैं। और अगर एक भी निश्चय की थोड़ी सी भी कमी है, हिलना चालू कर सकते हैं। कई सोचते हैं कि चलो मुझे खुद में विश्वास नहीं है, बाबा में केवल है, बाबा ही करेगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता हूं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा की भी मदद तब मिले जब खुद में हिम्मत हो। अगर अपनी ही हिम्मत नहीं है तो बाबा की मदद भी कहां से मिलेगी, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। तुम एक कदम आगे रखोगे तो बाबा 10 कदम 100 कदम तुम्हारे आगे रखेगा, परंतु अगर वो एक कदम निश्चय का आगे रखने की हिम्मत ही नहीं है तो फिर 100 कदम मदद के भी कैसे मिलेंगे। क्योंकि पहला कर्म हमारा होना है। कहीं कहते हैं ना, बाबा की मदद तो हमें चाहिए पर मदद के लिए हिम्मत भी वो ही देवे, बाबा ही देवे हिम्मत। अब ये तो नहीं होगा, हिम्मत भी वही देवे मदद भी वही करे, दोनों वही करेगा क्या? जैसे बच्चे को होमवर्क करना है तो बच्चे को होमवर्क आता ही नहीं यार, मम्मी डैडी उनका होमवर्क कर दे सारा, मम्मी कर दो होमवर्क कर दो, तो माँ बच्चे पर चलो दया करके होमवर्क कर ले, पर एग्जामिनेशन हॉल में मम्मी जाएगी क्या? वो जाके उसका एग्जाम देगी क्या? उसमें तो उसको अकेले ही जाना है ना, उसी को परीक्षा में अपियर होना है। माँ बाप तो नहीं जाएंगे, भले सारा साल उनका होमवर्क मम्मी डैडी ने कर भी लिया तो मान लो, पर बच्चा तो अलबेला हो गया, मम्मी डैडी कर लेंगे होमवर्क हमारा। इसलिए माँ बाप क्या कहते हैं बच्चे को, हाँ तुम करो तुम करो, हाँ मदद करेंगे पर अब हिम्मत तो रखो। हाँ फिर कुछ ऐसी कठिनाई आई तो हम मदद करने को तैयार है। तो ये नहीं कि हाँ बाबा ही शक्ति देगा, बाबा में मेरा पूरा निश्चय है और अपनी में हिम्मत ही नहीं है, तो बाबा की मदद भी नहीं मिलेगी। इसीलिए पहला जो पाया है वो अपना स्वमान है। लेकिन स्वमान और अभिमान इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर है, और कई लोग अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं। है अभिमान, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, देखना मैं कैसे करता हूँ, पर अंदर में डर है, पता नहीं होगा नहीं होगा, और बाहर से दिखावा है कि मैं कर सकता हूँ, बाबा की मदद है मैं कर सकता हूँ, पर करने से पहले न बाबा याद है न अपनी हिम्मत दिखा रहे, अंदर ही अंदर डर रहे हैं, तो ये तो अभिमान हो गया ना, उस समय दिखावे का था अभिमान और अंदर में तो डर बैठा हुआ है। लेकिन स्वमान और अभिमान इसमें क्या सूक्ष्म अंतर है? स्वमान जो होगा वो आत्मा का होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये मुझे आत्मा का स्वमान है, या जो भी टाइटल्स बाबा ने हमें दिए हैं वो आत्मा का स्वमान है। चाहे बाबा ने जो आत्मा के गुण बताए हैं वो मेरे अंदर ही निहित है, ये आत्मा का स्वमान है। और अभिमान जो होता है वो दे अभिमान के आधार पर जो सोच चलते हैं, मेरे को क्या कोई कर सकता है, मैं कोई कम हूं क्या, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा का मतलब क्या, वो शरीर के भान में है, आत्मा के स्वमान में नहीं है। मैं धनवान हूं, मैं पैसे से सब कुछ कर लूंगा, मेरे पास बहुत बाहुबल है, ताकत है, मैं कर लूंगा, अब ये सब दे अभिमान है, क्योंकि अंत के समय ये सारी बातें काम ही नहीं आती है। आज भी हम कई अखबार में पढ़ रहे थे, एक साइंटिस्ट ने कहा, क्योंकि बहुत रिसर्च चल रही है ये कैंसर के ऊपर, कई बातों पर बहुत बातें, तो आखिर कैंसर का कारण क्या है? तो कैंसर का कारण तो क्या, कोई ये जीन्स है? फिर कहा नहीं, ये भी नहीं है, अगर जीन्स होते तो फिर सभी बच्चों को होता, अगर ये होता तो फिर सबको होता, सारे परिवार में होता, पर इनको हुआ इनको क्यों नहीं, इनको असर हुआ, एक बच्चे को हुआ दूसरे को नहीं हुआ, तो उसका कारण क्या? अगर जीन्स माँ बाप का ही है तो सभी बच्चों को हो ना, क्योंकि माँ बाप का ही बच्चे को मिला है, पर एक को हुआ दूसरे को नहीं, तो उस पर रिसर्च। तो फिर आखिर किसी साइंटिस्ट ने कहा कि जिसको ये बीमारी है उसका बैड लक बैड लक, बेचारे की बुरी किस्मत। अब बुरी किस्मत का मतलब क्या हुआ? जीन से तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो बुरी किस्मत उसके लिए ही क्यों, दूसरे बच्चे के लिए क्यों नहीं। एक हवाई जहाज का क्रैश हुआ, परंतु दो व्यक्ति बच गए, बाकी सब गए। तो वो दो व्यक्ति कैसे बचे, तो क्या कहेंगे हाँ? दो बचे या पचास थे तो दो ही केवल मरे, बाकी 48 बच गए। तो वो दो के लिए बैड लक और ये दो जो बचे उनके लिए गुड लक हाँ? तो ये किस पर आधारित है? तो आखिरकार यही कहने में आएगा कि कर्म, हर एक का अपना अपना कर्म। एक बार इस एक डिबेट चली थी कहीं पर कि बाबा कई बार कहते हैं कि माया आती है, माया माया ये माया करती है। फिर कोई कहते कि नहीं नहीं ये तो बाबा परीक्षा लेता है, ये माया नहीं है, ये बाबा परीक्षा लेता है। फिर तीसरे ने कहा नहीं नहीं ना बाबा परीक्षा लेता है ना माया आती, ये तो अपना ही कर्मों का हिसाब किताब है। तो प्रश्न है कि अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है या कोई माया आती है या बाबा परीक्षा लेता है हा? अगर कहेंगे बाबा परीक्षा लेता है तो सबके लिए लेवे ना, इनके लिए है इनके लिए क्यों नहीं, माया ने किया तो माया इनके लिए क्यों नहीं हा? तो क्या कहेंगे? तो ये भी जो शब्द हम कहते हैं ना, ये माया ने कराया, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं माया ने कराया, माया नाक पकड़ती है, माया कान पकड़ती है। उस दिन बाबा ने कहा माया कान काट देती है, माया चोटी पकड़ती है, माया थप्पड़ मारती है। किसी ने लिस्ट निकाली माया क्या क्या करती है। थप्पड़ भी मारती है, फिर घुसा भी मारती है, फिर बेहोश भी गिरा भी देती है, बेहोश भी करती, फिर मार भी डालती है। कहाँ शुरू हुआ, खाली नाक पकड़ा। तो नाक कैसे पकड़ती है माया हाँ? नाक पकड़ जो किसी का नाक पकड़ा जाता है ना, तो जब उसको वो घुटन होती है क्योंकि सांस नहीं ले पाता है, नाक उसकी पकड़ी तो जैसे अंदर में घुटन, थोड़ा सा संशय चालू हो जाता है तो जैसे घुटन हुई। फिर उसके बाद माया नाक पकड़ना शुरू करती है, नाक के बाद फिर कान पकड़ती है। तो नाक पकड़ा माना संशय थोड़ा शुरू हुआ, चाहे खुद में, चाहे बाबा में, चाहे ड्रामा में, चाहे परिवार में। फिर कान पकड़ना शुरू हुआ माना कान पकड़ा माया ने, माना यार फलाने ने क्या कहा, फलाना भी क्या कर, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उनका असर आने लगता है, माना कान माया ने पकड़ लिए। फिर चोटी पकड़ी कैसे, माया चोटी कैसे पकड़ती, चोटी पकड़ने से सिर पीछे चला जाता है ना, चोटी किसकी खींचो तो सिर पीछे चला गया माना आपने पास्ट को देखा, और पास्ट को देखा तो क्या देखा कि पहले तो मैं बहुत अच्छा था, बाबा का बन गया तो पता नहीं, देखो अभी कहते ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, ये सब झंझट हाँ, ये सब ये तो और झंझट हो गया, पहले तो सब कुछ खाता था मौज करता था, कोई संकल्प भी नहीं था कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, अभी तो ये सारे हमारे आगे रिस्ट्रिक्शंस आ गए, तो मानो हम पिछला देखते हैं, पहले और ही अच्छा था। फिर और क्या करती है माया, थप्पड़ मारती है, थप्पड़ मार करके, थप्पड़ मारती ना तो सिर साइड में हो जाता है ना, किसको थप्पड़ मारो तो माना दूसरों को कैसे देखना शुरू कर देते, ये भी तो नहीं कर रहा है, ये तो मेरे से पुराना है, ये भी तो नहीं कर रहा है, मैंने नहीं किया तो क्या हुआ हा? इसने तो देखो 20 साल से, मैं तो अभी 2 साल का ही हूं, इसका भी ऐसे ही है हाल, तो ये तो सब कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरों को देखना, फिर और क्या करती है माया हाँ, ठोसा मारती है तो एकदम आंखें ही लाल हो जाती, किसी को मारो और आंख में लगे तो अंधा हो जाए, माना उस समय तो अंधेरा ही हो जाता है ना आंखों के आगे, तो एकदम अंधेरा, ज्ञान का नेत्र ही जैसे बंद हो जाता है। और फिर थोड़ा सा गिरा दिया तो बेहोश कर दिया, फिर तो मार ही डालेगी माया। लेकिन बाबा माया को दोष देते हैं, ये भी बच्चों से प्यार है बाबा का, कई बार होता है ना, समझो छोटा बच्चा है, वो चलने लगता है, चलना शुरू करता है, अभी तक चलना सीखा नहीं है पूरा। अभी माँ कहेगी बेटा चलो एक कदम आगे रखो, पैर आगे रखो, वो उसको पकड़ती भी है और वो पैर आगे रखता है, बड़ा खुश होता है। फिर दूसरा रखता और खुश होता है, उसको चलना सिखाती है माँ, परंतु फिर धीरे से अपना हाथ छोड़ देती है, तो क्या होता है, बच्चा गिर जाता है, क्योंकि हाथ पकड़ा था तो चलो हिम्मत थी और अपनी भी हिम्मत दिखाई, माँ की मदद भी मिली और बच्चा चलने लगा। फिर माँ ने अपना हाथ छोड़ा, भाई अपने पैर पर खुद चले, अपने पैर से बच्चा गिर गया। अब जब बच्चा गिर गया तो माँ बच्चे को थोड़ी मारेगी, तुम गिरे क्यों, पर माँ बच्चे को खुश रखती है, क्या कहेगी, चल धरती छींची, हाँ तुम छींची हो, देखो मेरे बच्चे को गिरा दिया, तो दोषी कौन, वो धरती है, धरती को दोषी बनाया कि मेरे बच्चे को गिरा दिया, अभी बेचारी धरती का क्या कसूर। परंतु माँ का बच्चे से प्यार है ना, माँ बच्चे को हिम्मत देना चाहती है तो उसको थोड़ी दोष देगी, तुम क्यों गिरे, तुमको चलना नहीं आता, बेचारा अभी चल ही रहा है, अभी तो सिखा ही खाए, लेकिन वो उसको धरती को दोष देगी, बच्चे को नहीं। अब इसके दो पहलू है, एक पहलू तो ये है कि ये माँ का प्यार है, बेटा कोई बात नहीं, ये धरती गंदी है, छींची है, पर दूसरा पहलू ये है कि दोष देने का एक एक उसको मौका मिल गया तो दूसरे को दोष देना, ब्लेम गेम, इसको हम अगर एक और पहलू देखें, ब्लेम गेम, ब्लेम यानी दोषी कौन, धरती, तो बच्चा सीख गया मैं दोषी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं, ये धरती दोषी है। फिर दोबारा गया तो खुद ही धरती को मारेगा, छी तो मुझे गिरा दिया, तो मैं दोषी नहीं हूं, सदा दूसरा ही दोषी है। मां ने तो प्यार जताने के लिए बच्चे को कुछ नहीं कहना है, बच्चे में उमंग दिलानी है, और इसलिए धरती को दोष दिया, पर बच्चा उसे उल्टा सीखा, क्या सीखा, ये धरती दोषी है। इसी प्रकार बाबा तो अपना प्यार दिखाते हैं, बच्चे मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे, लेकिन माया बुरी है, माया ऐसी है, माया ऐसी है। बाबा कोई ऐसी मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा ने बच्चों को याद करने के साथ माया को याद न किया हो, होगी कोई ऐसी मुरली जिसमें माया याद ना आई हो बाबा को, एक बार भी माया शब्द ना आया हो मुरली में, कोई ऐसी मुरली नहीं होती है। तो माया को भी उतना ही बाबा याद करता है, परंतु ये बाबा का प्यार है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे सदा सावधान रहे, हिम्मत कभी ना हारे, हालांकि है तो माया का ही राज्य ना इस संसार में, पल पल पर माया बैठी है आंखें फाड़ करके देखती है, और वो कैसे आएगी माया, हमारे ही संकल्पों में ही आएगी ना, और तो कोई दूसरा रूप तो है ही नहीं ना, और वो संकल्प में सबसे पहला संकल्प ही संशय का उठेगा, ये माया का काम है। तो वो कैसे आई हमारे संकल्प, संकल्प भी तो हमारी चीज है ना, कोई बाहर की चीज थोड़ी है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि कोई कर्मों का ही हिसाब किताब, मेरे ही कर्म है, हमें किसी और को दोष देना ही नहीं है, माया कुछ नहीं है। फिर बाबा बच्चों को फिर ये भी शक्ति देंगे, बच्चे माया कुछ नहीं है, माया तो कागज का शेर है, भले तूफान है लेकिन तोहफा है। तो ये क्यों बाबा ऐसे कहेंगे, ताकि बच्चों बच्चे हिम्मत ना हार ले, क्योंकि मेहनत तो बच्चों को ही करनी है। तो स्वमान और अभिमान, इन दोनों के बीच में जो सूक्ष्म भेद है, जिसको हम कहेंगे एक इंग्लिश में शब्द है कॉन्फिडेंस, एक है कॉन्फिडेंस आत्मा में आत्मविश्वास, और दूसरी है ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा ही विश्वास। एक शब्द है डिटर्मिनेशन, माना अपने अंदर में दृढ़ता, पर दे अभिमान का जो रूप होगा वो जिद, जिद भी एक डिटर्मिनेशन ही, एक क्या कहेंगे डिटर्मिनेशन को, क्या कहा, अंदर में दृढ़ता। पर वो जो जिद करता है ना, वो भी दृढ़ है अपनी जिद में, पर उसको वो है देहाभिमान का रोग। और मुझे सफलता जरूर मिलेगी, ये अंदर की दृढ़ता, ये पॉजिटिव अप्रोच है। तो उसी का ही नेगेटिव रूप है जिद। जैसे कोई व्यक्ति इतना जिद्दी होता है, कुछ भी उसको कहो ना, उसका बहाना तो उसके पास रेडी है, तैयारी होता है बहाना, कैसे करूं, ये नहीं हो सकेगा, फलाना नहीं हो सकेगा। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, मैं कह रही हूं, होगा क्यों नहीं होगा, कोशिश तो करो। हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं, परंतु वो अपना अपना ही वो बताता रहेगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और जिद्दपना है या ओवर कॉन्फिडेंस है अपने विचारों का, तो दूसरे को उनके विचारों को रिस्पेक्ट नहीं देना, ये भी तो देहाभिमान का रूप है। तो इसीलिए बाबा कहते स्वमान और अभिमान के बीच में ये सूक्ष्म रेखा है। तो जो बाबा ने आत्मा के गुण बताए हैं, जो शक्तियां बताई है, जो विशेषताएं आत्मा की बताई है, उनके आधार पर अगर मैं स्थित हूं तो ये स्वमान है, पर इनके विपरीत जो देहाभिमान के वश है तो ऑटोमेटिकली वो स्वमान की कमी है। जैसे मान लीजिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये मुझे निश्चय है, स्वमान है मेरा, मैं शांत स्वरूप हूं, तो मुझे कोई भी अशांत नहीं कर सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश करे कोई। शांति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरी सच्ची धारणा है, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता, ये स्वमान है। परंतु इसी का ही नेगेटिव रूप हो क्या हो जाता है, सारी दुनिया मुझे अशांति करने के लिए बैठी हुई है, यहां ऐसे कहेंगे लोग, सब मुझे दुखी दे रहे हैं, सब दूसरे दोषी। तो बाबा कहते हैं ये तो आपकी मन की स्थिति है, कोई और आपको न दुख दे सकता है, न सुख दे सकता है, न शांति, ये आपकी अपनी चीज है, न आपसे कोई ले सकता है। कई बार कहते हैं ना, अगर आप अशांत होते हो तो आपने परमिशन दी उसको कि आपको अशांत करे, अगर आपकी परमिशन नहीं है तो आपको अशांत नहीं कर सकता है। नो वन कैन स्नैच अवे योर पीस विदाउट योर परमिशन। आपने परमिशन दे दी उसको कि हाँ भले मेरी शांति मेरे से ले लो, इसने मुझे अशांत किया, तो दूसरे पर दोष धरना ये भी एक देहाभिमान की निशानी है, और स्वयं के स्वमान में रहना ये आत्मा का मान अपने अंदर महसूस करना। कि इसलिए जब दूसरे को दोष देना ही नहीं है और अपने आप को ही ठीक करना है, तो फिर स्वमान हमको सहज ही आ जाएगा। परंतु अगर दूसरे को ही दोष देना है और अपने को नहीं, तो ये तो अभिमान हो गया, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये अभिमान हो गया। और अगर मुझे आत्मा को अपना स्वमान प्यारा है तो मैं दूसरे को दोष नहीं दूंगी, अपने आप को ही ठीक कर दूंगी। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे अपने में निश्चय रखो, और अपने में निश्चय रखना माना अपने स्वमान में सदा रहना, और यही हमारी अचल स्थिति का आधार है। मेरी खुशी का आधार दूसरा बने जरूरत ही नहीं है, मेरी शांति का आधार दूसरा बने, कोई और सपोर्ट चाहिए, आधार किसी को नहीं बनाओ। फिर निश्चय आता है कि बाबा ही मेरा आधार है। अब उस आधार से भी फिर परे नहीं जाना है, अपने ऊपर ही निश्चय रखना वो तो अच्छी बात है, लेकिन बाबा के आधार को छोड़ना नहीं है। कई हम लोगों को कहते जब उनको आत्मा का परिचय देते ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता आत्मा का परिचय, फिर जब परमात्मा की बात आती है कहते परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, बस आत्मा को जान लिया बस इनफ ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, पर शांति का सागर वो इसकी भी जरूरत क्या है, बस आत्मा के अंदर ही स्थित रहना है, यही सब कुछ है। तो फिर परमात्मा की जरूरत है या नहीं, उनका सा आधार चाहिए या नहीं चाहिए, एक आत्मा ही आधार, वही आधार है बस ना, कि दूसरा आधार भी चाहिए, क्यों चाहिए परमात्मा का आधार है? जी आत्मा भी तो शक्ति स्वरूप है ना, तो क्यों परमात्मा का आधार चाहिए आत्मा को? जी पावर हाउस वही है, तो क्या इसका मतलब आत्मा कमजोर हो गई क्या? सबसे आगे है वो, तो मैं भी कम हूं क्या? लेकिन नहीं, वो आधार भी बहुत ही जरूरी है। क्यों बहुत ही जरूरी है? क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब मेरे सिर पर है, वो अनेक जन्मों का जो कर्मों का हिसाब किताब है, जो इतने सारे पाप किए हैं, उनको चुकतू करने के लिए वो आधार चाहिए। वो केवल स्वयं का वो की ताकत नहीं चलेगी, उसके लिए बाबा का आधार जरूर चाहिए। क्योंकि भले मैंने आत्म ज्ञान के आधार से अपने आप को सशक्त किया, लेकिन जो पिछला खाता है उसको खत्म करने के लिए तो बाहर का आधार चाहिए। आत्मा बहुत जन्मों की मैली हो गई है, भले बाबा ने कहा कि तुम शक्ति रूप हो, लेकिन वो शक्ति कायम रहने के लिए सर्वशक्तिवान से संबंध जरूर चाहिए। जैसे एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, भले उसमें अंदर चार्ज है पर यूज भी तो हो रही है ना, और यूज हो रही है तो उसको चार्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन ये डर नहीं है, घबराते नहीं है कि हाय चार्ज खत्म हो रही है, खत्म है, कोई बात नहीं, रिचार्ज हो जाएगा। आप अपना मोबाइल यूज करते हो, सारा दिन मोबाइल यूज किया, तो फिर रात को डरते हो कि अरे मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, रख दो चार्ज पर, इसमें क्या है, हो जाएगा चार्ज। परंतु कहीं आप गए और चार्जर ही भूल गए तो डर लगेगा ना। क्या करे, अगर मैं चार्जर तो लाया ही नहीं, अभी मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा तो कहां से लाऊंगा। इसीलिए डर डर करके वो मोबाइल को यूज करेंगे कि भाई कहीं इसकी चार्ज खत्म ना हो जाए। कई बार होता है ना, भूल जाते हैं चार्जर, और चार्जर साथ में है, पावर हाउस का भी पता है, तो हम डरेंगे थोड़ी। तो अपनी चार्ज तो है, लेकिन वो सदा कायम रहे उसके लिए पावर हाउस की भी मदद जरूर चाहिए। इसीलिए उसमें भी निश्चय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, हाँ कई समझते हैं कि हमारा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस किसी से कनेक्शन नहीं है, बाबा से भी कनेक्शन तोड़ देते हैं, समझते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन कब लड़खड़ा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सपोर्ट तो एक टांग पर कब तक खड़े रहेंगे। भले एक टांग में ताकत है, लेकिन दूसरी टांग भी चाहिए ही, अगर वो उस ताकत को कायम रखना है। तो बाबा का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। फिर कई कहते ठीक है बस मैं और बाबा, बस हमको परिवार नहीं चाहिए, हा? अभी वो भी नहीं चलेगा। कई बार बाबा की मुरली में भी आता है ना, कई कहते बस हमारा शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, हमारा ब्रह्मा बाबा से भी कोई कनेक्शन नहीं है। अरे ब्रह्मा बाबा से कैसे कनेक्शन नहीं है, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही देगा। कहलाते तो हम क्या है अपने आप को, ब्रह्मा कुमार न या शिव कुमार? क्या कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार। तो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, ब्रह्मा से नहीं, ब्रह्मा से नहीं माना परिवार से भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के ही सारे बच्चे हैं, एडॉप्टेड बच्चे तो ब्रह्मा के ही है ना सभी। तो इसीलिए ये तीसरा जो निश्चय है वो भी बहुत जरूरी है, कई लोग हम देखते बस कई जो बाबा ने कल की मुरली में था कि कई कहते मैं तो इंडिपेंडेंट रहूं किसी पर डिपेंडेंट नहीं। अरे डिपेंडेंट कैसे नहीं, बाबा पर तो डिपेंडेंट सभी है। इंडिपेंडेंट कहां से रह सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अकेला ही रहना चाहे वैसे उसको कोई नहीं चाहिए, अकेला व्यक्ति भी पागल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, दीवारों से बातें करेगा, क्योंकि अकेला है ना, बात तो करेगा। अंदर में जो आएगा वो मुख से निकलेगा तो सही, तभी कोई है ही नहीं उसके सामने, तो क्या करेगा, दीवारों से ही बात करेगा, तो माना पागल हो गया। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है मैन इज अ सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता, अकेला नहीं रहता है। एक शेर होगा अकेला रहेगा, पर हाथी जो होते हैं अकेले नहीं होते, वो झुंड में होते हैं, शेर अकेले अकेले होते हैं। इंसान भी अकेला अकेला नहीं रह सकता है, उसको भी परिवार का साथ चाहिए। शुरू से ही इस समाज के अंदर परिवार है, प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। तो इसी प्रकार शुरुआत तो हम यहीं से करते हैं ना, ब्राह्मण परिवार। जितना बड़ा ब्राह्मण परिवार में हम रह सके उतने ज्यादा शक्तिशाली हैं हम। अगर अकेले अकेले हैं तो कोई शक्ति थोड़ी है, कैसे पता चले कितनी शक्ति हमारे में है। जब तक दूसरों का साथ नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, अपने अंदर की शक्ति भी कितनी है वो भी कैसे पता चले। सहन शक्ति कितनी है हमारे में, समाने की शक्ति कितनी है, सहयोग की शक्ति कितनी है, वो संगठन से ही पता चलता है। चाहे न्यारा होने की है, समेटने की शक्ति, चाहे विस्तार करने की शक्ति, कोई भी शक्ति का जब वर्णन करते वो संगठन में ही होती है। और संगठन को ही हम महत्व नहीं दे रहे हैं, अकेले अकेले हैं तो बाबा कहते हैं तो भी पक्का निश्चय नहीं है। और बाबा यहां तक कहते हैं कि यही परिवार साथ भी चलना है, आधा कल्प तो साथ ही रहेंगे ना, ये सब ब्राह्मण फिर सारे देवता बनेंगे तो आधा कल्प तो साथ ही रहेंगे ना, कि और कोई साथ रहेंगे, कौन रहेंगे, हम ही रहेंगे ना। फिर आधा कल्प के बाद बाबा कहते कहां तुम बिखर जाओगे, पता नहीं कहां के कहां चले जाओगे। अभी जो संगम पर ये ब्राह्मणों का साथ है, ये साथ आधा कल्प तक चलेगा। तो जिनके साथ आधा कल्प का साथ रखना है, उनके साथ हमारा संबंध कितना प्यारा हो, कितना सुंदर हो, कितना विश्वास का हो। लेकिन फिर बाबा सावधान भी करते हैं, क्या सावधान करते हैं, यहां से भविष्य का संबंध बनाना शुरू मत करो, समझ गए। सतयुग में तुम मेरी युगल बनना, ऐसे कहेंगे। ये मेरा सतयुग में बच्चा बनेगा, ये मेरी सास बनेगा, मेरे सास ससुर तो होंगे ही ना, भाई बहन बनेंगे नहीं, कोई यहाँ संबंध नहीं बनाने वाला। तो संगठन में निश्चय माना, इतना प्यार हो आपस में, क्योंकि हम आधा कल्प साथ रहेंगे, परंतु उतने ही फिर न्यारे हो। न्यारे अर्थात कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं जोड़ना है आपस में, प्यार जरूर हो। किसी का अवगुण चित्त पर धर लिया तो ये कर्मों का हिसाब किताब जोड़ दिया, किसी को दुख दिया ये कर्मों का हिसाब किताब जोड़ लिया। मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि कैसे पता चले ये कर्मों का नया हिसाब किताब जोड़ा है या पुराना खत्म किया है, कैसे पता चले। तुमने कहा बहुत सहज है पता करना, अगर हमको उसका दुख मिला माना हमने कर्मों का हिसाब किताब चुकतो किया, मना बनाया, और अगर हमने उसमें कुछ भी लिया नहीं और हमारी बुद्धि एकदम क्लियर है, तो इसका मतलब मैंने अपना हिसाब किताब चुकतो किया। अगर लिया दुख, फिर वो कर्म भी साथ में किया, दुख दिया भी, तो हिसाब किताब बनाया। बस इतना सिंपल है भाई, चुकतो करना है तो अगर उसने दिया आप लो भी नहीं, आप अपनी शांति को गवाओ मत, तो समझो ये चुकतो हो गया। पर आप अशांत हुए और आपने उनको भी कुछ कह के अशांत कर लिया, माना ये आपने हिसाब किताब बना लिया। यही तरीका है समझने का। तो मुझे कोई नई हिसाब किताब भी नहीं बनाने, चुकतू करने पहले की, उसका वो दुख लेना भी नहीं है। है तो सही, अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं, भले ईश्वरी परिवार में है, लौकिक में तो है ही, लेकिन ईश्वरी परिवार में भी तो है ना, क्यों नहीं, आधा कल्प तो साथ रहे है ना। पर हमें कुछ भी वो पुराना हिसाब किताब को स्वीकार नहीं करना है, इसलिए न्यारा भी बनना बहुत जरूरी है। और न बने कोई हिसाब किताब, इसके लिए सबका सबसे प्यारा भी रहना जरूरी है। तो न्यारा और प्यारा, ये दोनों स्थिति अगर हमारी हो, तो ये ईश्वरी परिवार बहुत सुंदर, दुनिया का सबसे सुंदर से सुंदर परिवार है ये। क्योंकि हर एक का लक्ष्य एक ही है, पढ़ाई एक ही है, टीचर एक ही है, साथ ही रहना है, साथ ही जाना है, एक ही घर में जाना है, एक के ही बच्चे हैं, एक ही दुनिया में आना है। परंतु बाबा कहते हैं सब नंबरवार हो जाएंगे, सबका पद अलग अलग हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पर यहां उस रूप से नहीं देखना है। आपको मालूम होगा ना, शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हो रही हुई थी, तो उस समय 14 साल भट्ठी में थे, तो उस भट्ठी में बहुत साक्षात्कार होते थे। तो शुरू में तो ऐसा हुआ कि जो ध्यान में जाती थी ना, उनको पता चलता था कि ये तो दासी बनेगी, ये दास बनेगा, या जो भी है, ये तो महारानी बनेगी, ये शहजादी है, तो वो तो उनको उसी रूप से कहते थे जैसे ये मेरी दासी है। तो और दासी को नाम देते थे कांता, कांता, दासी को कांता। इसलिए बाबा ने कभी कोई बहन का नाम कांता होता है, बाबा बदल देते उसका नाम, कांता नहीं, शांता। है क्या किसी का नाम कांता? किसका नाम था कांता? जी, एक माता का नाम, तो उसका नाम शांता रखा है कि नहीं? आज से आज से भाई कांता नहीं, शांता। तो कांता माना सतयुग में दासी। तो सचमुच वो कांता कांता करके बुलावे उसको, और उसको मतलब उसे काम कराए वो, उसको ऐसे के, और वो शहजादी आती थी वतन से, जैसे बाबा ट्रांस का पाठ कराते थे, तो उसको तो बहुत बुरा लगता था कि मैं क्या दासी बनूंगी सतयुग में, मैं तो दासी बनूंगी। तो बिल्कुल उसकी जैसे मूड ही ऑफ हो जाती थी। फिर बाबा ने धीरे धीरे ये सब बंद करा दिया, ट्रांस का इस प्रकार का पाठ, तो जैसे भविष्य उनका दिखाई देता था, तो बाबा ने बाद में सब बंद करा दिया। या पहले ऐसे भी होता था कि बहुत बार सुना है बहनों से, मान लो किसी ने भोग बनाया, और भोग जो बनाए ना वतन में, तो सब इमर्ज हो जाता था, तो वहां पर किसी का बाल वो भोग में लगा, दिखाई दिया, तो बाबा कहते थे जाओ बच्ची वापस, इसमें ना वो पूरी शुद्धि से नहीं बनाया, पूरी शुद्धि से नहीं बनाया। और सचमुच वो वापस आती थी और भोग खोल के देती, वहां उसमें बाल पड़ा है, पता चल जाता था। कई बार ऐसे होता था कि सभा में जो बैठे ना, उसमें कोई ऐसा ऐसी आत्मा थी जो ना धारणाओं पर नहीं चलती थी, इतनी पवित्र नहीं, और समझो वो ऐसी आत्मा आकर के बैठी, तो वो जो ध्यान में जाने वाली जाती वापस आ जाती थी, क्यों वापस आती थी? क्योंकि कोई ऐसी आत्मा सभा के अंदर बैठी है जो धारणा में नहीं है। अभी कैसे पता चले? तो शुरू शुरू में इसे बहुत होता था, फिर धीरे धीरे बाबा ने ये सब पाठ बंद करा दिया। पहले तो बहुत ध्यान में जाती थी, कई बार मुरलियों में आपको आता मिलता आता है। हाँ, बाबा कहते थे देखो ये तो घूमने चली गई है, बाबा मुरली में कहते, क्योंकि बाबा मुरली चलाते थे। अब वो भोग में बाबा कहते थे बच्ची जाओ गो सुन कम सुन, माना ध्यान में जाओ जल्दी वापस आ जाओ, बाबा को भोग लगा करके आ जाओ, बस ये रस्म है संगम की, जो आधा कल्प चलती है रस्म, जो भोग लगा कर आते बाबा भगवान हमको खिलाते, हमारा फर्ज है हमारा प्यार उनको व्यक्त करना, हम भी भोग खिलाते, पर जल्दी आना वापस। गो सुन कम सुन ये ध्यानी जो ध्यान में जाते थे उनके लिए था, जल्दी जाओ जल्दी भोग लगा करके आओ। पर शुरू शुरू में वो जाती थी ना, तो वो वहां जाकर के रास विलास करती थी। अभी तो फिर भी कुछ पता नहीं चलता, तो जैसे ध्यान में गई और ऐसे 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 हाथ करती थी, ऐसे 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 वो ध्यान में आधा घंटा। बेचारे लोग तो इंतजार कर रहे हैं, उनको तो जाना होता था, और बाबा की भी मुरली समझो बाबा के सामने बासी वो बैठती थी, वो संदेशी भाई ध्यान में गई, गुरुवार का दिन था भोग लगता था, तो वो संदेशी ध्यान में चली गई और वो तो पता नहीं कहाँ स्वर्ग में रास कर रही है क्या कर रही है, और बाबा की मुरली चलने लगती थी। बाबा फिर मुरली चलाते थे, जब तक वापस आए तब तक फिर बाबा कहते देखा बच्ची ये टाइम वेस्ट कर रही है, टाइम वेस्ट कैसे, ध्यान में जाकर के वो तो रास विलास कर रही है और बैठी हुई होती थी, हाथ ऐसे हिलाती रहती थी, हम लोग देखते रहते थे। ये अनुभव हमको भी बहुत हुआ शुरू में, तो 1960s में आए, तो फिर बाबा ने ये सब भी बंद करा दिया, सब कुछ बंद करा दिया। अभी तो ट्रांस का पार्ट ही कितना कम करा दिया। मम्मा मना जब अव्यक्त हुए तो मम्मा का पार्ट चलता था जरूर, वो आती थी संदेशियों के तन में, लेकिन कैसे माया प्रवेश हो गई, कोई भी ऐसे चाहे ध्यान में गए कि माया मम्मा मेरे में आई, मम्मा मेरे में आई, ये सब बाबा कहते ये सब माया है, तो वो भी बाबा ने बंद करा दिया। ये सब अलग अलग रूप थे, अभी तो देखो कितना कम करा दिया। तो कई कहते हैं कि शुरू में जितना ट्रांस का पार्ट चला था वो अभी क्यों नहीं है, तो बाबा कहते अभी जरूरत नहीं है, अभी तो ज्ञान मिल गया है ना, उस समय ज्ञान नहीं था इतना, इसीलिए ये सब जरूरी था। शुरू में तो ज्ञान बिल्कुल था ही नहीं, प्यार ही प्यार था और ट्रांस ही ट्रांस था, ज्ञान का तो पता भी नहीं था, कुछ भी इतनी समझ नहीं थी। अभी तो कितना क्लियर हो गया है सारा ज्ञान, तो इसलिए उसके आधार से बच्चे खींचते हुए आए। उस समय विनाश का साक्षात्कार बहुत होता था। कई कहते अभी क्यों नहीं होता, अभी भी हो जाए ना तो निश्चय हमारा पक्का बैठ जाए। बाबा कहते अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, उस समय प्रैक्टिकल में कुछ नहीं था, इसलिए ट्रांस के द्वारा निश्चय बिठाया जाता था। अभी तो ट्रांस के द्वारा निश्चय की जरूरत ही नहीं है, प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना, है ना, प्रैक्टिकल में पता ही नहीं, अचानक कुछ भी हो जाता है। मुंबई में तो और खतरा है, पता नहीं कभी बम गिर जाए कहीं भी पता ही नहीं चले, कितना डर, एक्सीडेंट्स तो कितने होते रहते, बात ही मत पूछो। अभी भी सुना उस दिन वो क्या गाड़ी थोड़ी लेट, ट्रेन कुछ लेट हो गई, तो क्या पत्थर मारे क्या तोड़फोड़ किया, अरे भाई कुछ तो होगा ना, इसमें क्या है, लेकिन जरा भी धीरज नहीं, जरा भी धीरज नहीं। कुछ चार पांच दिन पहले की बात है, वो जो सबर्बन ट्रेन वो शायद कुछ हो गया ना, चार पांच दिन पहले की बात है, दीवा स्टेशन या कहाँ भी, तो इतना वो लड़मा मचा दिया जो बात मत पूछो, बस जरा भी धीरज नहीं है, जरा भी नहीं। तो बाबा कहते ये तो सब अभी कलयुग का अंत है। बाबा ने उस दिन कहा था, आज ही आज की मुरली था, दिल्ली तो परिस्थान होना, अभी तो कब्रिस्तान है। अभी तो दिल्ली में तो कितना डर है, अभी 26 जनवरी के लिए ओबामा आ रहा है, राष्ट्रपति अमेरिका का, वो आ रहा है भारत में 26 जनवरी का मेहमान बनेगा, इतनी सतर्कता है, इतनी पुलिस है, इतनी पुलिस है, बात मत पूछो, क्योंकि वो आतंकवादियों का वो उनको मिल गया माना सूचना कि ये कुछ करेंगे 26 जनवरी के दिन। तो बाबा कहते डर ही डर है, चप्पे चप्पे पे डर ही डर है, वहां भाई वहां पुलिस खड़ी, वहां पुलिस खड़ी है, जैसे कि युद्ध नहीं है परंतु ये डर ही युद्ध का रूप है। क्योंकि कोई भी अचानक कुछ भी आतंक कहीं भी फैला सकता है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति आए तो उन्हें बड़ी बात है, तो डर है ना। वो जैसे कहानी सुनाते हैं ना, एक मिसाल देते हैं कि एक व्यक्ति राजा के पास गया और राजा को कहा कि राजन आप तो बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो, हाँ कितना आपका राज्य है, आप तो मालिक हो सब कुछ हो। तो राजा ने कहा अच्छा आप एक दिन का मालिक बनना चाहते हो, बनो। तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस आप गद्दी पर बैठो और जो हुक्म चलाओ आपका मानेंगे लोग। वो बैठा, पर उसने क्या किया, राजा ने एक बाल के आधार से एक तलवार लटका दी, बाल के आधार से तलवार। अब उस वो बेचारा बैठा सही पर सारा टाइम तलवार पर ध्यान, कहीं वो बाल तो कितना पतला होता है, अगर इधर घुमा तो तलवार कहीं मेरे ऊपर न गिर जाए। तो राज्य क्या कर सका, तलवार का ही ध्यान था कि कहीं मेरे सिर पर न लगे। तो कितना डर ही डर है। तो बाबा कहते हैं अभी विनाश का साक्षात्कार कराने की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल में देख ही रहे हैं। तो परिवार में इतना निश्चय हो कि यही हमारा बाबा का परिवार है जो हमारे साथ चलेगा, पर उतना भी ध्यान जरूर हो कि कोई भी हिसाब किताब न बने, आपस में कोई हिसाब किताब न बने। वो पहले तो लोहे की जंजीरें, जो मोह की रगे हैं वो लोहे की जंजीरें, पर दैवी परिवार में आकर के सोने की जंजीरें बन जाती है। सोने की जंजीर भी गला काट सकती है, नहीं? सोने की जंजीर भी, वो सोने की बड़ी सुंदर लगती है लेकिन वो भी गला काट सकती है। आपस में कोई ना कोई ऐसा अट्रैक्शन या कुछ भी किसी भी प्रकार का, ये भी एक फांस बन सकती है। तो बाबा कहते वो भी ना हो, इसलिए न्यारे भी और प्यारे भी। इतना ऐसा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा जो एक ही लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और फिर चौथा है ड्रामा। ड्रामा तो बहुत भाई बहने इसमें मून जाते हैं। अगर सब ड्रामा है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें? सारा दिन यही प्रश्न चलते रहते हैं लोगों के, फिर पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? कलप के बाद वही होगा जो हुआ था, वैसा ही होना है। तो हम कहते अच्छा मत करो पुरुषार्थ, बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करो। तो बैठ सकोगे? बैठ भी तो नहीं सकोगे, बैठ भी नहीं सकोगे, करना भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे? करना तो है ही है, कर्म तो करना ही है। कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते, आत्मा को शरीर मिला है तो कर्म भी साथ साथ है ही है। तो जबकि करना ही है कर्म, तो क्या करो? अच्छा ही करो ना, अच्छा ही करो ना, या बुरा करेंगे? भाई क्या पता कल पहले बुरा किया था तो अभी बुरा करेंगे, ऐसे कल पहले बुरा किया था पता तो है नहीं। तो जबकि करना ही है तो अच्छा ही करो। और दूसरी बात है कि इस ड्रामा के अंदर ये भी निश्चित है कि प्रारब्ध बिना पुरुषार्थ के है ही नहीं, कोई भी प्रारब्ध पुरुषार्थ के बिना है ही नहीं। तो फिर कई कहते हैं अगर प्रारब्ध पुरुषार्थ के बिना है ही, तो प्रारब्ध ही पुरुषार्थ कराएगी, हम क्यों करें? हम कहते अच्छा आपको प्यास लगी है, अब ड्रामा में होगा तो पानी आ जाएगा, ड्रामा में होगा तो मुख में चला जाएगा, फिर ड्रामा में होगा तो अंदर भी चला जाएगा, ऐसे कि पीना तो आपको ही है, अपने आप हो जाएगा क्या? अपने आप हो जाएगा वो तो आपको ही करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा की जो पॉइंट है ना, ये बहुत नाजुक है, ये इमरजेंसी गेट है। आप जैसे देखते हैं बसेस में, ट्रेन्स में, हवाई जहाजों में इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, गेट्स होते हैं इमरजेंसी, वो ऐसे नहीं खोलना होता है। अगर चाहो तो वो तो बहुत सहज है ना खोल करके जाना, लेकिन एकदम इतना सील्ड होता है, पक्का होता है, तो ऐसे नहीं खोल सकते हैं। पर जब इमरजेंसी आए तभी खोलना है, ऐसे वैसे अगर खोल दिया तो दंड पड़ जाता है, नहीं कितना दंड लगता है। तो ये ड्रामा भी एक इमरजेंसी एग्जिट है, बाहर जाने का रास्ता इमरजेंसी। जब कुछ भी न सूझे, बात हो गई और बहुत ही बुरी हुई, तो एक ही शब्द यूज करो, ड्रामा। ये भगवान ने अपनी रचना का सीक्रेट बताया है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि संसार में जो कुछ होता है कुछ भी नया नहीं है। हम कहते देखो कई ऐसे लोग हैं जो भविष्यवाणियां करते हैं, अगर भविष्य निश्चित नहीं होता तो भविष्यवाणी कैसे करते, निश्चित है तभी तो कर लेते ना। अपना हाथ दिखाने जाते हैं, मेरा क्या भविष्य है, इसका मतलब निश्चित है ना, ये तो हाथ क्यों दिखाते। ज्योतिष विद्या इतनी क्यों आज संसार में बहुत बढ़ गई है, पामिस्ट्री भी बहुत है, एस्ट्रोलॉजी बहुत है, बहुत बढ़ गई है। इससे सिद्ध है कि सब निश्चित है, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना है। पर तू जब वो बात हो जाए, ऐसा ही होना था, ये भगवान ने अपनी रचना का सीक्रेट आउट किया है। जैसे कोई सीक्रेट द्वार होते ना, सीक्रेट द्वार किसी को पता नहीं होते, संसार में किसी को पता नहीं इस ड्रामा का ज्ञान कि जो कुछ भी हो रहा है कोई भी नया नहीं है, कलप कलप हुआ है, विनाश भी कलप कलप हुआ है, कोई इस कलप में होगा ऐसे नहीं, कल्प कल्प में सत्युग आया है, हर कल्प में सत्युग भी आया है, हर कल्प में कलयुग भी आया है। तो कितने ऐसे कलयुग बिताए होंगे, कितने ऐसे सत्युग बिताएंगे, कितने बार विनाश देखेंगे। बाबा ने एक दिन मुरली में पूछा कि खूने नाहक खेल होगा, कई तो बाबा को कई कहते बाबा वो उससे पहले मुझे उठा लेना ताकि अब ये सब देखे ही नहीं है, कोई या जो समझ उसके पहले ही बाबा उठा ले, वे हमको देखना ही नहीं है खूने नाक खेल। खूने नाक मतलब नाहक खून बहाना, तो जिनको ये देखने का मतलब डर लगेगा ना, नहीं देखना चाहते वो हाथ उठाएं। अच्छा सारे बहादुर बैठे सारे इतने बहादुर हो क्या, सोची कोई तो होगा, माताएं भी सब निर्भय है जी, मुंबई वाले बड़े निर्भय है कुंती बहन सब पास जी, अच्छा बचपन से वही सब देख रहे हैं इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ड्रामा के राज में दो बातें बहुत सुंदर भगवान ने हमें अपना सीक्रेट बताया रचना का, कि एक तो नथिंग न्यू और दूसरा जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण है, कुछ भी अकल्याणकारी है ही नहीं इस ड्रामा के अंदर। बस ये अगर बुद्धि में आ जाए तो देखो कितना निश्चय बुद्धि विजयंती हम अनुभव कर ले अपने आप को, इसलिए न प्रश्न उठेंगे ये क्यों, ये कैसे, ये कब, ये कहां, कुछ नहीं, न आश्चर्य होगा, हाय ऐसा हुआ क्या, हाय ऐसा हुआ ये क्या, ये तो निश्चित था ना। तो प्रश्न भी नहीं उठेंगे, तो आश्चर्य भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, बिल्कुल दुख नहीं होगा, और चौथा डर भी नहीं लगेगा, हाय क्या होगा, डर भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, तो न न प्रश्न है, न आश्चर्य है, न दुख है, न चिंता है, न डर है। ये पांचों बातें खत्म हो जाती, क्योंकि दो बातों का पक्का निश्चय है ड्रामा का, कि कोई भी चीज वो नई नहीं है, और दूसरा सब कुछ कल्याणकारी है। अभी पता नहीं चल रहा है क्या कल्याण इसमें समाया हुआ, लेकिन ये कल्याणकारी है। कितने उदाहरण हम दे सकते हैं इसके, परंतु ये अगर हमारी बुद्धि में आ जाए और ये चारों निश्चय हमारे अंदर इतने दृढ़ हो, तो बिल्कुल अंगद बन करके हम इस संगम युगी जीवन को इतना सुंदर रूप से बिताएंगे। दिल होती है जल्दी विनाश हो या और लंबा टाइम चले संगम युग, क्या चाहिए? लंबा चले, जाना है घर, ये नहीं आता है बुद्धि में, बाबा जल्दी विनाश कर लो तो घर जाएं, हा? नहीं आता, जिसको आता है वो हाथ उठाए। अच्छा देखो दो चार उठा रही माताएं, तो फिर बाबा से ये तो नहीं पूछेंगे बाबा विनाश कब होगा, पूछेंगे भी नहीं ना। बाबा ने एक बार कहा था ना, बच्चे पूछते हैं बाबा से, बाबा को, बाबा विनाश कब होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेहमान को भेजना चाहते हो जल्दी, जो मेहमान बाबा आया है, मेहमान बन के आया है, तो उसको जल्दी भेजना चाहते हो। जैसे किसी मेहमान को पूछो ना आप कब जाओगे। तो विनाश कब होना माना ये बाबा से पूछना कि बाबा आप कब वापस जाओगे परम धाम। इसलिए संगम युग बहुत प्यारा है, वो मेहमान सदा बैठा रहे ना हमारे साथ, नहीं हाँ, क्या समझते हैं? हाँ, लेकिन बाबा कहते होगा तो अचानक, हाँ? जब सब कुछ बिल्कुल निश्चिंत होके बैठेंगे ना तब होगा, लेकिन उसके लिए भी एवर रेडी तो जरूर चाहिए। तो भले अचानक होगा पर एवर रेडी रहेंगे तो अचानक में पास होंगे। और उसके लिए तीसरी बात जो बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए देखो अभी कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करते हैं, कहीं भूकंप अभी आया नहीं है पर भूकंप अगर आए तो क्या करेंगे, तो पहले से तैयारी करते। आग लगे तो क्या करेंगे, तो आग लगी नहीं है परंतु वो प्रैक्टिस कराते हैं। बाढ़ आए तो क्या करेंगे, तो पहले से ही उसकी प्रैक्टिस हो। तो ये बहुत काल का अभ्यास एक सेकंड में अशरीरी बनने का, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती निश्चित निश्चिंत, तो अशरीरी बनना बहुत सहज है, बहुत सहज है, लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि इन सब के बीच में होते एक सेकंड में आत्मा न्यारी बन जाए, ये अभ्यास करे। तो चलिए अभी अभ्यास करेंगे, 5 मिनट बिल्कुल अशरीरी स्थिति बन जाए। और चारों ही हमारे निश्चय के पिलर्स मजबूत बन जाए, जो कोई दुनिया की ताकत इसको हिला न सके। एक सेकंड में आत्मा शरीरी हो जाए। शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद शीलोबेन जी का, एक हाथ से दीदी का अभिनंदन करेंगे। आप सभी के योग के रिजल्ट क्या हुआ पता है? आज सुबह से जो तपस्या कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? दादी जान के खींच करके चले आए ऊपर, लेकिन दादी कोई क्लास नहीं कराएंगे, केवल बाबा के कमरे में आएंगे तो केवल दृष्टि मिलेगी आप सभी को, ठीक है? तो अभी साइलेंटली जाएंगे बाहर और दादी कॉटेज के जो है ना रोड, तो वहां दोनों तरफ लाइन में खड़े रहेंगे शांति से। ये पांडव भवन में है दादी, अभी आएंगे, चारों धामों की चक्कर लगा रहे हैं दादी, फिर ज्ञान सरोवर में भी बाबा के कमरे में आने वाले हैं, लेकिन यहाँ बाबा के कमरे में पेंटिंग चल रहा है तो इसके कारण से दादी कॉटेज के जो बाबा का कमरा है उसमें जाएंगे, तो आएंगे तो सभी को दृष्टि मिलेगी, ठीक है? अभी शांति से जाएंगे और फिर वहां लाइन में खड़े रहेंगे दोनों रोड के दोनों तरफ। ओके, ओम शांति।